یہاں پر پھر لفظ تبرج استعمال ہوا ہے جو آگے سورت الاحزاب میں بھی آئے گا. متبرجات کا لفظ بیرے جیم ہے, برج لفظ بھی اسی سے ہے. تبرج کیا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا؟ کیونکہ لفظی ترجمہ یا مفہوم ہم نے اس کا کیا کیا, اظہار زینت, زینت کی نمائش یا زینت کو نمایاں کرنا. لیکن لفظ کا انالیسس کرتے ہیں, تبرج کا لفظی معنی ہے باب تفاعل سے ہے نمایاں ہونا, ابھرنا اور کھل کر سامنے آنا. ہر ظاہر اور ابھری ہوئی چیز کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. برج کو برج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی عمارتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر اوپر نظر آتا ہے. بادبانی کشتی کے لیے لفظ بارجہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ دور سے سمندر میں نظر آ جاتی اس کے بادبان کی وجہ سے. اب آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بادبان کیا ہوتا ہے. جو نام جب آپ رکھتے ہیں خیابان بادبان تو کوئی نہیں پوچھتا, لیکن اگر میں یہ لفظ بولوں سب کو پوچھنا پڑتا ہے. جی ہاں, سیل بورڈ جو ہوتی ہے. اصطلاح میں تبرج کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے, یعنی یہ تو لفظی معنی تھا, لیکن لغت میں جب اس کا مفہوم آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک یہ جسم کے حسن کو نمایاں کرنا. وہ کیسے نمایاں ہوتا ہے, آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ حسن کو نمایاں کرنا, مثلا چہرے پہ فاؤنڈیشن کریم لگا کر اس کو بالکل سفید کر لینا, تو نمایاں ہو گیا نا, پرومیننٹ ہو گیا. یعنی عام دھلا ہوا چہرہ جب ہوتا ہے تو وہ نمایاں نہیں ہوتا, لیکن جب اس کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے, ہونٹوں پہ کچھ لگ جاتا ہے, تو وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں. اگر نہ لگا ہو تو وہ چہرے سے ملتے جلتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر. اسی طرح آنکھوں پہ اگر کچھ نہ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے, وہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی. لیکن آپ کاجل اور بناوٹ کی چیزیں لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ نمایاں نظر آنے لگتی. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو جسم کے حسن کو نمایاں کرنا, لوگوں کو دکھانا. دوسرا, لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا. تیسرے, چال ڈھال اور جسم کی حرکتوں سے خود کو نمایاں کرنا, جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے ایسا ڈریس پہننا, ایسا کٹ پہننا کہ جس سے سب کی توجہ عورت کی طرف مبذول ہو جائے. یہ تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور مفسرین نے کی ہے. مجاہد, قتادہ اور ابن ابی نجاح کہتے ہیں کہ التبرج المشی بتبختر و تکسر و تغنج. اس کا ترجمہ ہے, تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا. خود ہی انہوں نے لفظ بول لیا ہے کیٹ واک. التبرج یعنی ایسی چال مردوں کے سامنے نہیں چلے. یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ جو نمایاں کرنا ہے یہ عورتوں کے بیچ میں نہیں, یہ مردوں کے سامنے اس ساری نمائش کی ممانعت ہے. کیونکہ سب سے پہلے کیا کہا, کرنا فی بیوت کرنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. تو ظاہر کرنا, نمایاں کرنا مراد گھر میں تو نہیں, اس سے مراد باہر جا کر ہے. یعنی عورتوں کو مردوں کے سامنے یا لڑکیوں کو جو بھی بالغ ہو جائیں مردوں کے سامنے اس طرح کی چال نہیں چلنی چاہیے. اس سے پھر آپ دیکھیں کہ وہ ڈانس جو مردوں کے سامنے کرتے ہیں اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہ نہیں جاتی. پھر اسی طرح مقاتل کہتے ہیں ابداء قلائدها وقرتها وعنقها. تبرج کا معنی ہے عورت کا اپنے ہار, اپنے بندے اور گلا نمایاں کرنا. یعنی حجاب اس طرح پہنے کہ وہ کان کے پیچھے چلا جائے تو کانٹے نظر آئیں, گلے کے پیچھے چلا جائے تو گردن نظر آئے, اور جو زیور وغیرہ پہنا ہے وہ پوری طرح نمایاں ہو. یہ تبرج میں آ جاتا ہے. مبرد کا قول ہے, یہ ایک لغوی ہے, مبرد کا قول ہے کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے. یعنی خوبصورتی کی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا, جیسے سورت نور میں گزرا ہے کہ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, کہ وہ اپنے دوپٹے, خمر خمار کی جمع, خمار دوپٹے کو کہتے ہیں, اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں. کیونکہ تبرج میں سینے کا نمایاں کرنا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ تبرج کا لفظی معنی کیا ہے, उभार या उभर कर सामने आना। अबू उबैदा कहते हैं कि अंतुखरिज मिन महासिनहा मा तस्तदई बिही शहवतुर रिजाल, औरत अपने जिस्म और लिबास के हुस्न को इस तरह नुमाया करे जिससे मर्दों को उसकी तरफ रगबत हो, अट्रैक्शन हो, शहवत हो। यहाँ अरबी में लफ्ज शहवत इस्तेमाल हुआ है, यानी मर्दों के जज्बात को भड़काने वाला लिबास, नाजो अंदाज और वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करना। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत अलूला, और जाहिलियत का लफ्ज जो है वो इस्लाम से पहले दौर के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। और दौर जाहिलियत में औरतें, अरब औरतें सर ढांकती थीं, लेकिन ढांकने का अंदाज ऐसे होता था जैसे आजकल आपने कश्मीरी औरतों को बाज़ुकत स्काफ पहने देखा हो, क्योंकि पहन के वो पीछे फेंक देती हैं कि जिससे सीना, गला, हार, कांटे सब जीनत नुमाया हो। इस स्टाइल से रोका गया है, ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत अलूला, यानी जाहिलियत अलूला से एग्जाम्पल दे के बात समझाई गई कि उन जैसे नहीं बनना, तुम जाहिलियत के तरीकों को फॉलो नहीं करना, तुम मुसलमान औरतें हो, इस्लाम के तरीके को फॉलो करोगी। तो मुतबर्रिज औरत वो जिसका सर ढका ना हो। तबर्रिज खासतौर पर सर के खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिस्म पर तो कुछ ना कुछ ओढ़ा ही होता है। मुतबर्रिजा उस औरत के लिए बोला जाता है जो मर्दों के सामने अपने हुस्न और अपनी खूबसूरती का इजहार करे। तो चादर उतारने की इजाज़त किन बूढ़ियों को है? जिनके अंदर अपनी नुमाइश का जज्बा ख़त्म हो चुका हो। ये बूढ़ी औरत के ऊपर बड़े अच्छे शेर किसी ने लिख के भेजे हैं। है ये बूढ़ी औरत का हाल, सफ़ेद हो गए उसके बाल, सूख चुकी है उसकी खाल, हो चुकी है वो बदहाल, फिर कैसे ओढ़े वो पेशाल, यानी चादर, धीमी हो जाए उसकी चाल, ख़त्म हो जाए उसका जलाल, बात बात पे करे सवाल, है ये बूढ़ी औरत का हाल। तो ऐसी औरत जो है इसके ऊपर कवायद मिनन निसा में आ जाती है ये बात, ठीक है, जो अपनी जेब व जीनत से आरास्ता हो, खा वो कितनी भी बूढ़ी हो, उनको इजाज़त नहीं कि वो चादर उतारें। وَأَيَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तदखुलू बुयूतन नबी, ना तुम दाखिल हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में। घरों क्यों कहा गया, घर क्यों नहीं कहा गया? जी हाँ, इसलिए कि तमाम अजवाज के लिए अलग अलग हुजरे थे। अजवाज मुतहरात के नाम बता देती हूँ, क्योंकि अमूमन हम उनके नाम भी नहीं जानते होते। उसमें हजरत खदीजा है, हज़रत आयशा है, हज़रत सौदा है, हज़रत हफ्सा बिनत उमर फारूक, हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत ज़ैनब बिनत जहश, हज़रत जुवैरिया, हज़रत उम्मे हबीबा बिनत अबी सुफियान, हज़रत मैमूना बिनत हारिस, हज़रत सफ़िया बिनत हुयै इब्न अख्तब, हज़रत मारिया क़िब्तिया और सैयदा रहाना। इल्ला अन युज़ना लकुम, मगर ये कि इजाज़त दी जाए तुमको, इला तामिन खाने की तरफ, यानी खुद मत जाओ, किसी वजह से ही जाओ। वजूहात में क्या वजह हो सकती है? मसलन खाने पे बुलाया गया। गैर नाज़िरीन इनाहू, ना देखने वाले, ना इंतज़ार करने वाले, इनाहू पकना उसका, बिन बुलाए मत जाओ, और जाके धरना मार के बैठे ना रहो, और इस बात की टो न लगाते रहो कि कब खाना पकेगा, तो खाकर उठेंगे। इना का लफ्ज़ी माना है किसी चीज़ की गायत और पुख्तगी, यानी किसी चीज़ का अपने अंजाम को पहुंचना। वलाकिन लेकिन, इज़ा दुई तुम जब बुलाए जाओ तुम, फदखुलू तो दाखिल हो जाओ, फ़ाइज़ा ताइम तुम फिर जब तुम खा चुको, फंतशिरु तो मुंतशर हो जाओ, घर चले जाओ। वला मुस्तअनिसीन लिहदीस, और ना आराम पाने वाले, उन्स पाने वाले, मशगूल होने वाले बातों में, यानी खाना खाकर बैठे मत रहो। इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबी, ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देती, तकलीफ़ देती। और ये एक हकीकत है कि किसी भी बामकसद इंसान की ज़िंदगी में ऐसे काम बहुत तकलीफ़ का सबब होते हैं। मसलन आप अगर दीन की तबलीग नहीं भी कर रहे हैं, कोई जॉब भी कर रहे हैं, कोई और आपका ऐसा काम है कि जिसमें आपको यकसुई चाहिए, आप लोगों से मेल मुलाकात भी चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं, बुलाना भी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कट गए हैं हर चीज़ से कि ये सब कुछ एक आफत बन गया है कि अगर कहीं चले गए तो जान नहीं छूटेगी, वापस नहीं आ सकेंगे, और अगर किसी को बुला लिया तो मुसीबत में फंस जाएंगे। इसके फिर एक रिएक्शन क्या है कि इंसान बिल्कुल इंसानों से कट जाता है, तो उसका तरीका क्या है कि इस्लाह हो, सब अपनी अपनी इस्लाह कर लें, बुलाने वाले भी और जाने वाले भी। और इसमें खास तौर पर ये बात यहाँ इसलिए भी की गई कि कहते हैं कि हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब आपका निकाह हुआ था तो वलीमे की दावत पर जब लोगों को बुलाया गया तो बहुत देर तक बैठे रहे। इसमें हजरत अनस की रिवायत है कि रात के वक्त वलीमे की दावत थी, आम लोग तो खाने से फारिग होकर रुख्सत हो गए, मगर दो तीन हजरात बैठकर बातें करने में लग गए आपस में। तंग आकर हुजूर उठे और अजवाज मुतहरात के यहाँ एक चक्कर लगाया, वापस तशरीफ लाए तो देखा कि वो अभी भी बैठे हैं। आप फिर पलट गए और हजरत आयशा के घर जाकर बैठ गए। अच्छी खासी रात गुजरने पर जब आपको मालूम हुआ कि वो चले गए हैं, तब आप हजरत जैनब के मकान पर तशरीफ लाए। तो इसके बाद तो बिल्कुल नागुजीर हो गया कि लोगों को ऐसी बुरी आदतों पर मुतनब्बे कर दिया जाए। जब आज वक्त ऐसा होता है ना कि सब चले जाते हैं तो सिर्फ एक दो ही नहीं उठते, और वो आपस की गुफ्तगू और बहसों और सियासत की डिस्कशन में लगे रहते हैं। उसका न अहले खाना से कोई ताल्लुक होता है, न किसी और को उससे कोई दिलचस्पी होती है। तो ये भी सताने के अंदाज हैं। इन्न ज़ालिकुम काना युज़िन नबी, ये हरकतें तुम्हारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देती हैं। तो यस्तहयी मिनकुम, मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते, हया की वजह से कुछ नहीं कह पाते। वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक, और अल्लाह हक बात कहते हुए शर्माता नहीं। जैसे पहले पारे में भी आता ना, इन अल्लाह ला यस्तहयी अन यद्रिबा मसलम मा बऊदतन फमा फौकहा। फिर इसके बाद फरमाया, वह इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन, और जब तुम सवाल करो उनसे किसी भी काम की चीज़ का, फायदे की चीज़ का, ज़रूरत की चीज़ का। मता कहते हैं ना बरतने की चीज़, बर्तन वगैरह जैसे होता है, बर्तन को भी बर्तन इसीलिए कहते हैं ना। वह इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन, और जब मांगना हो तुमको उनसे कुछ ज़रूरत की चीज़, फसअलूहुन्ना, तो मांगो उनसे, मिन वराए हिजाब, हिजाब के पीछे से, पसे पर्दा, पर्दे के पीछे से मांगो, सामने आकर नहीं। यही आयत है जिसको आयत हिजाब कहा जाता है। बुखारी में हजरत अनस बिन मालिक की रिवायत है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इस आयत के नुजूल से पहले कई बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर चुके थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके यहाँ भले और बुरे सभी किस्म के लोग आते हैं। यानी जाहिर है कि एक नबी का घर है और हर तरह के जरूरतमंद लोग आते हैं, और उसमें कोई रुकावट तो खड़ी नहीं की जा सकती थी। काश आप अपनी अजवाज मुतहरात को पर्दा करने का हुक्म देते। एक और रिवायत में है कि एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजवाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आपके हक में मेरी बात मानी जाए तो कभी मेरी निगाहें आपको न देखें। लेकिन चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कानून नहीं बनाते थे, आप अल्लाह ताला के इशारे के मुंतजर रहते। जाहिर है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई बात कहते तो वो एक जबर होता। तो उसके बाद ये हुक्म आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजों पे पर्दे लटक गए, और उसी तरह बाकी तमाम मुसलमानों ने भी अपने घरों पर पर्दे लटका लिए कि कोई शख्स भी अब डायरेक्ट घर के अंदर दाखिल ना हो, इजाज़त के साथ हो, और कोई किसी के घर में मत झांके। क्यों? ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, ये बात ज़्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के लिए। कुम कौन है? सहाबाए कराम। और हिन्ना कौन है? अजवाजे मुतहरात। क्या नऊज़ुबिल्ला इनके अंदर कोई खराबी थी? दोनों तरफ इंतहाई पाकीज़ा लोग थे, उन मर्दों से बढ़कर भी पाकीज़ा शायद ही आपको कहीं और कोई मिले। और इन ख़वातीन जिनको महातुल मोमिनीन कहा गया, इनसे भी बढ़कर कोई पाकीज़ा औरत शायद कहीं और मिले। लेकिन इस सारी पाकीज़गी के बावजूद क्या फरमाया कि इंसान हो ना इंसान, लिहाजा पर्दे से फ़ायदा क्या होगा कि पाकीज़गी बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? दिल पाक होने चाहिए, निगाहें पाक होनी चाहिए, पर्दे की क्या ज़रूरत। यहाँ क्या बताया जा रहा है, पर्दे से ही पाकीजगी आएगी, हिजाब ही पाकीजगी का सबब है। खा तुम कितने ही नेक और पाक हो, लेकिन इंसान हो, और कोई भी शख्स खुद को पाक न कहे और पाक कह नहीं सकता। ला तुज़क्कू अन्फुसकुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है पाक करता है। तो गोया हिजाब या पर्दे की हिकमत और इल्लत, इल्लत किसको कहते हैं, सबब, वजह क्या है, कि इससे मर्द और औरत दोनों के दिल एक दूसरे के साथ फितने में मुब्तला होने से महफूज रहेंगे, फितना पैदा नहीं होगा। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन, यानी बेहिजाब सामने आने से दिलों की पाकीजगी बरकरार नहीं रह सकती। हिजाब पाकीजगी का सबब है, उसमें मददगार है। वमा कान लकुम अन तुअज़ू रसूल अल्लाह, और तुम्हारे लिए जायज ही नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा दो, सताओ। आपको सताने के क्या तरीके हो सकते थे? नंबर एक, बगैर इजाजत आपके घर आ जाएं, ऐन खाने के वक्त में पहुंच जाएं, या आकर बैठे रहें और खा कर जाएं, या खाना खा कर बैठे रहें, या आपकी मर्जी के खिलाफ, मर्जी के बगैर बैठे चले जाएं, या फिर बगैर हिजाब के अजवाज मुतहरात से बात करें, या कोई भी नाफरमानी करके, किसी भी किस्म की नाफरमानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देती। वला अंतन के हो अजवाजहू, और न तुम निकाह करो आपकी बीवियों से, ये भी अजियत देने वाली बात है। मिम बाद ही, आपके बाद, अबदा, कभी भी, नहीं, किसी भी मर्द के लिए ये बात तकलीफ देह होती है कि अगर उसको बताया जाए कि तुम्हारे फौत होने के बाद तुम्हारी बीवी की शादी फलां से कर देंगे, और आपकी बीवियां तो उम्महातुल मोमिनीन करार पाई, इसलिए खास तौर पर इससे मना कर दिया। इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाही अजीमा, ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। कौन सा? आपको सताना और आपकी अजवाज से निकाह की बात सोचना भी। और इसलिए भी अजवाज मुतहरात का पर्दा आम औरतों से ज्यादा था, या खास तौर पर उनको खिताब कर करके पर्दे की बात की गई, कि बगैर पर्दे के ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसा फितना खड़ा हो जाए। इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाही अज़ीमा, ऐसी तो बात सोचना भी अल्लाह के नजदीक बड़ी बात है। इन तुब्दू शैअन औ तुख्फूहु, अगर तुम जाहिर करो कोई चीज या तुम उसको छुपाओ, तो इन अल्लाह काना बिकुल्ली शैअन अलीमा, तो बेशक अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। यानी कोई चीज हो सकता है तुम जबान पे ना लाओ, तुम्हारे दिल में ही हो, वो भी अल्लाह को पता है। अब जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो महरम और नामहरम की पहचान जरूरी हुई कि किसके सामने आए और किसके सामने ना आए। तो अजवाज मुतहरात को बतौर खास ये बताया गया कि ला जुनाह अलैहिन्ना, इन पर कोई गुनाह नहीं। और अजवाज मुतहरात के बाद बाकी तमाम औरतें भी मुराद हैं, क्योंकि वो रहनुमा हैं आम खवातीन की। इन पर कोई गुनाह नहीं, फी आबाएहिन्ना, उनके बापों के मामले में, यानी अपने बाप के सामने जाने में कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं। वला अबनाए हिन्ना, ना अपने बेटों के सामने, वला इख्वान हिन्ना, ना अपने भाइयों के सामने, सगे हों, सुतेले हों, रजाई हों, सब बराबर है। वला अबनाए इख्वान हिन्ना, और ना अपने भाइयों के बेटे यानी भतीजों के सामने, वला अबनाए अखवात हिन्ना, और ना बेटे उनकी बहनों के यानी भांजे, वला निसाए हिन्ना, और ना अपनी औरतों के सामने। इसकी मजीद तफसील सूरत नूर में आप पढ़ चुके हैं। वला मा मलकत अयमानुहुन्ना, और ना उनके ममलूकों के सामने। ममलूक की तफसीर भी याद होगा आपको, सूरत नूर में गुजर चुकी, जिसमें हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल दी गई थी, जब एक गुलाम उनके सामने आए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो आपने फरमाया था कि परेशान ना हो, क्योंकि सर ढांपती थी तो पाँव खुल जाते, पाँव ढांपती सर खुल जाते, नहीं एक ही ड्रेस ऐसा था। आपने फरमाया परेशान ना हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप और गुलाम ही तो है। वत्तकीन अल्लाह, और डरो अल्लाह से, तकवा, क्योंकि तकवा के बगैर पर्दे का कोई फायदा नहीं। नहीं, तकवा असल मकसूद है। अगर कोई शख्स खुद को पूरा ढांप के भी अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करता और पर्दे की रूह को पूरा नहीं करता, तो फिर वो महज कहने का पर्दा है। یعنی پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت، عصمت و عزت کی حفاظت. ظاہری پابندیاں گناہ سے نہیں بچا سکتی انسان کو جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو. بہت سے لوگ برقعے پہن کے، پردے کر کے بھی بہت خرابیاں کرتے ہیں. اس لیے واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. گھر میں بھی دیکھتا ہے تم کو، باہر بھی دیکھتا ہے، دل کے اندر بھی جھانکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے بھی دیا ہے مجھے، یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ریاض میں ایک مال پہ پیش آیا. یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو رمضان کے آخری ہفتے میں پیش آیا، الفیصلیہ ٹاور مال ریاض میں. یہ جگہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. کہتے کہ مال پر چند عرب نوجوان عورتیں چل رہی تھیں. ان میں سے ایک، اگرچہ وہ کالی عبایا میں تھی، وہ اس کو ہوا میں لہراتی ہوئی، لچکتی اٹھلاتی ہوئی اس طرح چل رہی تھی جو اسلام کے منافی تھا. اس نے عبایا کے اندر شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور جسم کے وہ حصے نمایاں ہو رہے تھے جو چھپانے چاہیے تھے. پولیس کا سپاہی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے اور اس طرح بے باکی اور بے شرمی سے خود کو نمایاں نہ کرے. اس نے اس عورت سے کہا کہ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا، کہ اگر ابھی آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ اپنے اس عمل کا اللہ کو کیا جواب دے گی. عورت نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگی، اپنے خدا کو فون کرو اور اس سے کہو مجھ سے بات کر لے. متوقع اس رد عمل اور عرب مسلمان خاتون کی دیدہ دلیری پہ حیرت ہوئی اور اس نے تین دفعہ کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل اور استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا. عورت بھی چل پڑی. پانچ منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ عورت اس مال کے چکنے فرش پر گر پڑی، اس کے جسم سے گندگی خارج ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہیے اپنی بیویوں سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، اہل ایمان کی عورتوں سے، کیا کہیے؟ یدنین علیہن، لٹکا لیا کریں اپنے اوپر، ڈال لیا کریں اپنے اوپر، من جلابی بہن، اپنی چادروں میں سے، اپنے جلباب میں سے. کیوں؟ ذالکا، یہ بات ادنا، زیادہ قریب ہے، مناسب ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، ان کی پہچان ہو جائے، فلا یؤذین، تو وہ نہ ستائی جائیں. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور الرحیم. یعنی عورتوں کے خود کو سنبھالنے کے باوجود اگر کوئی خبیث ان کو چھیڑتا ہے تو ان کا قصور نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آپ کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے ہی، لیکن آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کہ گھر سے بات شروع ہو، ازواج مطہرات اپنا نمونہ پیش کریں. پھر بیٹیوں کا ذکر ہے، وہ بناتے کا، اور پھر نساء المومنین، ساری مومن عورتیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نساء مومنات نہیں کہا گیا، نساء المومنین کہا گیا ہے، مومنوں کی عورتیں. ایک طرح سے مردوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، عورتوں کو اس ذمہ داری یا اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں. مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنینا، یدنی، ادنا یدنی، ادنا، اور صلہ ہے الا. ادنا کا اصل معنی ہوتا ہے قریب کرنا، اسی سے لفظ دنیا نکلا ہے. दोनों भी इसी से हैं। तो युद्ध नहीं, करीब कर लें और लपेट लें, लपेटने के मानों में भी आता है। लेकिन जब इसके साथ सिला अला आता है तो इसका माना होता है ऊपर से नीचे लटकाना, इरखा। यानी यहां पर खाली युद्नीना नहीं है बल्कि युद्नीना अलैहिन्ना है। अला ऊपर को भी कहते हैं, लपेट लें अपने ऊपर से। और ऊपर कहां से शुरू होता है? कंधों से, सर से शुरू होता है। यानी सर से, सिर्फ सर तक न करें, उसको भी लटकाएं। क्या चीज? मिन जलाबी बिहिन्ना, अपने जिलबाबों में से। ये जिलबाब क्या चीज है? जिलबाब की तशरीह अहले लुगत ने यूं की है, हुवा रिदाउ फौकल खिमार, हुवा अर्रिदा फौकल खिमार, वो चादर है दुपट्टे के ऊपर की या दुपट्टे से ऊपर की। खिमार क्या होता है? दुपट्टा या स्काफ। खमर से है ना ये लफ्ज। और याद होगा आपको जब खमर के बारे में हमने पढ़ा था कि खमर की डेफिनेशन क्या है, अल खमरु मा खामर अल अक्ल, कि खमर वो है जो अकल को ढांप ले। यानी शराब की डेफिनेशन क्या है? जिससे अकल जाती रहे। तो ये असल में खमर का लफ्ज भी खिमार से निकला, और खिमार कहते हैं औरत के सर के कपड़े को जिससे सर लपेटा जाए। सूरत नूर में हमने पढ़ा क्या हुक्म दिया गया था कि अपना खिमार जो है, दुपट्टा जो है, उसको अपने सीने पर भी डालें। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जिलबाब को ऊपर से लटकाएं, यानी सिर्फ खिमार काफी नहीं, सिर्फ दुपट्टा काफी नहीं, बल्कि दुपट्टे के ऊपर चादर डालें। और सिर्फ डालें ही नहीं बल्कि उसको लटकाएं भी। युद्नीना अलैहिन्ना, यानी सिर्फ लपेटना नहीं बल्कि लटकाना मकसूद है। और ये भी याद रखिए कि युद्नीना इलैहिन्ना नहीं है, तरफ अपने। क्या कहा? अलैहिन्ना। इला और अला में फर्क होता है। तो जिलबाब क्या चीज है? बड़ी चादर जो खिमार यानी अंदर के ड्रेस के ऊपर ली जाती है। एक लफ्ज हमने पढ़ा था लिबास, जो सूरत अल आराफ में आया था। फिर उसके बाद हमने खिमार पढ़ा, दुपट्टे की बात पढ़ी। लिबास कहते हैं ड्रेस जो इंसान जिस्म को छुपाने के लिए पहनता है, जिसको जीनत भी कहा गया। खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिद, अपनी जीनत पकड़ो हर मस्जिद के करीब। यानी लिबास वो चीज है जिसके बगैर नमाज नहीं होती, जो इंसान के सतर को ढांपता है, जो खूबसूरत होता है। जैसे शोहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन। और इस कमीज शलवार को अमूमन लिबास जैसे कहा जाता है, तो इसके साथ औरत के लिए खिमार भी होता है जो उसके सर को ढांपता है। तो क्या हुक्म है? कि वो खिमार छोटा ना हो कि जिससे सीना नजर आए, बल्कि खिमार लंबा हो जिससे सीना ढक जाए। और यहाँ पर क्या हुक्म है? कि खिमार और लिबास के ऊपर क्या पहना जाए? जिलबाब पहना जाए। और जिलबाब की जरूरत घर में नहीं होती, जिलबाब घर से बाहर का लिबास है। घर के अंदर लिबास ही काफी है।